ओम शांति। तो सभी के बिहाफ पे मुझे कहा गया है दीदी से क्वेश्चंस पूछने के लिए। जब तक आपकी साइड से क्वेश्चंस आए, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी हैं, तो तब तक मैं वो क्वेश्चंस पूछती हूँ जब तक आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके स्लिप मुझे दे सकते हैं। तो दीदी, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, कोई भी जब नई सेवा शुरू करनी होती है नई जगह पर, तो वहां पर इंडिया में भी बहनों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ऑपोजिशन भी होते हैं। जैसे छोटे गांव होते हैं, विलेजेस एरिया होते हैं, तो वहां पर उनके कुछ ऐसे कल्चर ट्रेडिशंस होते हैं जहां सेवा करना बहुत कठिन होता है। तो चाइना जैसी कंट्री में, जहां नए लोग, नए देश, नई भाषा, नया कल्चर, वहां के ट्रेडिशंस अलग, तो ऐसी स्थान पर सेवा करना, तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि वहां सेवा कब और कैसे शुरू हुई।
ओम शांति। अभी जो रुचिका बहन ने पूछा कि कैसे स्टार्ट हुई, एक्चुअली जो हमारा जाना हुआ वो 2012 में, शुरुआत में ये था कि जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पर, इंडियंस की सेवा की भी जरूरत है ना, क्योंकि वो लोग वहां पर ना कोई मंदिर है, ना गुरुद्वारे हैं, ना ही ऐसे अनऑफिशियली घर के अंदर अपना कोई पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, वो अलग बात है, बट ऑफिशियली ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो वो इंडियंस की सेवा के हिसाब से दादी जानकी ने और डॉक्टर निर्मला दीदी ने हमें उस वक्त कहा, वो भी एक स्टोरी है एक्चुअली, लेकिन सबको, बहुत भाई बहनों की तरफ से हमें ये आ रहा था, बार बार थॉट दिया जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, आप चाइना क्यों जा रहे हो। तो सेवा वहां जाके नहीं शुरू हुई, उससे पहले शुरू हो गई, वो मैं बताना चाहती हूँ आज। कि जब चाइनीज एम्बेसी में, दिल्ली में अपॉइंटमेंट था वीजा के लिए, और नॉर्मली टूरिस्ट वीजा लगाया जाता है पहले, ताकि बाद में जाके, दादी ने भी कहा कि आप जाके देखो, सब आपको सूट होता है, तब फिर आगे कंटिन्यू करने की बात है। तो टूरिस्ट वीजा इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट, तब तो नहीं था इतना, नॉर्मली इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे को इंटरव्यू का कॉल आया कि उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली बोला था खास कि जब वीजा के लिए एप्लीकेशन देना है तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज या राजयोग या कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है, एज एन इंडिविजुअल सिर्फ अप्लाई करना है। बट वो शायद जिन्होंने अप्लाई किया उनको ऐसा ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि जब भी बहनों का लगता है यहाँ से वीजा, तो वो यहाँ के लेटर हेड पे उसका कवरिंग लेटर लगता है, तो उन्होंने राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के लेटर हेड पे बना दिया कवर लेटर। अब वो वहां पे, उनको उस पे क्वेश्चन मार्क था। फ्राइडे मॉर्निंग अपॉइंटमेंट था, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू स्पेसिफिक, फ्राइडे मॉर्निंग 10 o'clock, मंडे मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट थी ऑलरेडी बुक्ड, तो 10 बजे मैं पहुंची अपना लेकर के जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, और उन्होंने वो सर्कल किया हुआ था राजयोग, बोले कि ये क्या है, क्योंकि आप वहां पे क्या करने जा रहे हो, उनका ये क्वेश्चन था। मैंने कहा मैं तो सिर्फ घूमने जा रही हूँ, और मुझे निर्मला दीदी ने आंसर भी प्रिपेयर कराया था कि अगर वो पूछेंगे आप क्यों जा रहे हैं, तो आपने घूमने का ही बताना है कि मुझे छुट्टी मिली है सेवा से और मैं घूमने जा रही हूँ, तो वही मैंने आंसर दिया। पर उन्होंने कहा आप वहां जाके राजयोग नहीं सिखा सकते, सो यू हैव टू राइट हियर मेंशन इन द लेटर आई विल नॉट टीच और प्रीच राजयोग इन चाइना। So, while I am there on this visitor's visa, so ठीक है, मैंने कहा ओके आई एम नॉट गोइंग टू टीच, मेरे को तो मुश्किल से छुट्टी मिली है ना, तो मैं तो फ्री घूमने जा रही हूँ। नहीं कहा, लिख के दोबारा से नया लेटर बना के आइए। दोपहर को 3 बजे वापस मैं गई सेक्टर से लेटर चेंज करके, और लेटर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया मीन्स इट्स ओके। इसके बाद मुझे वेटिंग में बिठाया। About 3:30, the same visa officer calls me inside कि आप अंदर आएंगे। वो अंदर मुझे अपने ऑडिटोरियम में लेके गया, और ऑडिटोरियम में उनका सारा एम्बेसी का स्टाफ, ऑल चाइनीज स्टाफ विद देयर फैमिलीज, दे वर सिटिंग। एंड एज आई एंटर, अंदर घुसते ही मेरे को बोला, आप इनको राजयोग मेडिटेशन सिखाएंगे? मुझे लगा ये या तो टेस्ट हो रहा है मेरा कि मैं क्या करने वाली हूँ और हम क्या सुनाते हैं और फिर पता नहीं और गड़बड़ नहीं हो जाए। तो पहले मैंने देखा उसका चेहरा, मैंने कहा आर यू श्योर? कहता यस। फिर मैंने बाबा को देखा कि सेवा है, सेवा तो करनी है। तो फिर हम गए, एक घंटे का उन्होंने टाइम दिया, एक घंटा अच्छे से क्लास कराया। क्लास कराने के बाद में एक बहन उठ के आती है, चाइनीज उनकी जो बहन थी, एंड उसने फिर उठ करके दृष्टि लेना शुरू किया। अब मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे लग रहा था मैं टोली ब्लेसिंग कुछ होना चाहिए, एंड यू कांट टेक एनीथिंग इनसाइड ना एम्बेसी में। तो दृष्टि दिया, उसके बाद पूरी क्यू लग गई, सब दृष्टि ले रहे, और आंखों में आंसू है उनके, बाबा जैसे उनको टच कर रहा है। आधा घंटा दृष्टि सेशन और जैसे वो डेढ़ घंटा पूरा हुआ, 5 बज गए और सेशन पूरा, उधर से वो ऑफिसर मेरा पासपोर्ट लेके आ गया, ये आपका वीजा लग गया। आई थिंक शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज वीजा, कि इतनी जल्दी तो एटलीस्ट भी 4 वर्किंग डेज होता है, अगर अर्जेंट में भी लगाते हैं तो भी। तो वहां से जैसे बाबा ने दिखा दिया कि सेवा शुरू हो गई, होनी नहीं है, यहां से हो गई। और बाकी वहां जाने के बाद बिल्कुल डिफरेंट था सीन। इंडियंस के जहां पे वो है कम्युनिटी, जहां इंडियंस रहते हैं, वहां पे हमने स्टार्ट किया था। एक फैमिली थी जो कॉन्टेक्ट में थी, जिन्होंने वहां पे स्टे का किया अरेंजमेंट शुरू में। फिर उसके बाद कोई नहीं आता है, आप एडवर्टाइज कर नहीं सकते, बोर्ड आप लगा नहीं सकते, कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते वहां पे, तो ड्रेस भी ये नहीं पहन सकते, ये पहन के बाहर नहीं जाती हूँ। तो वो सब लिमिटेशंस में अब मैसेज कैसे देना है सबको, सिर्फ तपस्या कर सकते हैं। वो फर्स्ट 6 मंथ्स ओनली तपस्या, कुछ नहीं था, और ये भी नहीं पता था कांटेक्ट कैसे करें किसी को। फिर धीरे धीरे बाहर जाना शुरू किया, जाके समझ में आया कि इट्स नॉट इजी, क्योंकि अगर आप ऐसे साड़ी में भी जाते हैं और बैज के साथ जाते हैं, कम से कम इंडियंस तो पहचानते ही है ना। अब अगर ये कॉस्ट्यूम भी नहीं है तो कोई आधार नहीं है, बिना आधार के ओनली बाबा आपको सेवा करनी है। तो धीरे धीरे उसकी एक्चुअली बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि कैसे कैसे आत्माओं को टचिंग हुई है, तो वो भी मैं बताऊंगी। बाकी फर्स्ट 6 मंथ्स रिसर्च में लगाया कि उनका कल्चर क्या है, फिलॉसफी थोड़ा सा स्टडी किया उनका, जो चाइनीज विजडम एंड फिलॉसफी है, और बाकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड ऑल दोज थिंग्स की इसमें हम क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कर सकते हैं।
तो दीदी, व्हाइट साड़ी वहां अलाउड नहीं है या कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं?
ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ भी अनयूजुअल कॉस्ट्यूम है तो वो कल्ट जैसा या रिलीजन जैसा ऐसा कुछ लगना नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान रखते हैं। अभी भी अगर आपने कभी सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि ओनली जहां कुछ जैसे सेंटर के अंदर हम हैं तो हम ध्यान से उतना हम पहनते हैं, अपने ड्रेस में होते हैं, बाकी बाहर होते हैं तो यू शुड लुक नॉर्मल, ये ध्यान रखना पड़ता है बस।
लैंग्वेज आपने वहीं जाकर के सीखा चाइनीज
लैंग्वेज? वहां जाके स्कूल ज्वाइन किया, लैंग्वेज कॉलेज, लैंग्वेज डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, 6 मंथ्स चाइनीज सीखा, और 6 मंथ्स सिर्फ किया, उसके आगे टाइम भी नहीं था इतना, लेकिन और जॉब भी किया 3 इयर्स, यहाँ इतने सालों में नहीं किया, लेकिन वहां अभी जो यहाँ की क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से वहां पर तो जॉब नहीं मिल सकती है, तो वहां इंग्लिश टीचिंग, मैथ्स, कंप्यूटर्स, बच्चों को स्कूल में ये सिखाया। तो उसके लिए फिर आपको स्टडी तो करना पड़ता है ना थोड़ा, लेकिन वो था, वो भी जरूरी था एक एपिसोड। सो ऑलमोस्ट 3 इयर्स, उसमें भी बहुत एक ब्यूटीफुल बाबा का अरेंजमेंट कहेंगे कि उसी समय ही एक इंडियन स्कूल खुला था जिसमें उनको टीचर की जरूरत थी, जॉब भी घर में आई चल के, हम सोच ही रहे थे कि आई हैव टू डू समथिंग, तो मैंने भी पता किया एक दो जगह इंस्टीट्यूशंस में कहीं पर, वहां किया भी पार्ट टाइम फॉर सम टाइम, फिर वो जॉब अपने आप आई, फिर वहां पे जॉब की और जॉब के साथ साथ सेवा करी। जॉब के थ्रू भी बहुत सारे बाबा के बच्चे कनेक्शन में आए, क्योंकि वो इंडियन स्कूल था तो जो इंडियंस थे, एक छोटी सी बच्ची आई तो वो, हम तो जॉब में जाते हैं तो जॉब की वैसी कॉस्ट्यूम में जाते हैं, तो वो बच्ची आकर के कहती ब्रेक टाइम में, फिफ्थ क्लास की बच्ची थी, तो शी सेड कि यू लुक लाइक सिस्टर शिवानी एंड यू स्पीक लाइक सिस्टर शिवानी बिकॉज वी लिसन टू सिस्टर शिवानी इन टीवी। तो वो नेपाल से थी और उनके पेरेंट्स और सब एसोसिएटेड थे। ऐसे करते करते बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां पे ना बैज था ना साड़ी थी, लेकिन फिर भी आत्माओं ने पहचाना।
तो दीदी, जैसे इंडिया में जो सेवा की हम रूपरेखा देखते हैं, बहनें प्रदर्शनी लगाती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, कोर्स कराते हैं, मेले करते हैं, बहुत सारे वैरायटी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स होते हैं, तो चाइना में सेवा की रूपरेखा क्या रहती है?
उसी वक्त बाबा की एक मुरली चली थी कि ऐसा समय आएगा कि आपके पास ना प्रदर्शनी का, ना चित्र होंगे ना प्रदर्शनी होगी, आपका चेहरा ही प्रदर्शनी होगी और चेहरा ही म्यूजियम होगा। सो ये चेहरा म्यूजियम ऐसे बन जाए। सो एक तो ये शुरू में, क्योंकि वो आप अगर पीसफुल हैं, आज की दुनिया में प्रैक्टिकली हमने देखा कि आपको देख के, आप सबने भी अनुभव किया होगा, आत्माएं खुद पूछती हैं कि आप इतने शांत कैसे रहते हो, फिर आपको एक चांस मिलता है बताने का। सेकेंडली फिर हमने कई चीजें करी, उसमें कुछ आर्ट कल्चर से रिलेटेड कुकिंग क्लासेस भी करी, पॉजिटिव कुकिंग। और वो भी एक बहन थी जो फर्स्ट चाइनीज स्टूडेंट थी, उसने अपने घर में ऑफर किया कि जैसे गीता पाठशाला की तरह कि आप यहाँ पे आके करा सकते हो क्लास। तो उनके घर में फिर हम इस तरह के सेशंस रखते थे। फर्स्ट टाइम तो कुकिंग का रखा, इंडियन कुकिंग, तो बहुत से लोगों को बहुत अट्रैक्शन था। फिर साथ में लास्ट में थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस ग्रुप के हिसाब से, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट किया।
तो दीदी, मैं आपके चाइना के अनुभवों के साथ साथ कुछ भाई बहनों के प्रश्न है वो भी मैं बीच बीच में लेती हूँ। जैसे आपने कहा कि शांत स्वभाव, शांत हमें रहना है, तो ऐसे ही एक भाई का प्रश्न है इसमें से कि आप इतना शांत कैसे रहते हैं, आपको कोई चिंता नहीं होती है, और ये एंजेलिक स्टेज जो आपने बनाई उसका राज क्या है?
अभी बन रहे हैं अटेंशन अटेंशन जरूर रहता है, क्योंकि जब कोई भी और स्थूल साधन नहीं है, हमारे पास साधन सिर्फ अपनी स्थिति ही है जो परमानेंट हमारे साथ है, और अपनी स्थिति को मेंटेन करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बातें आती हैं, आई भी हैं, आगे भी आएंगी, वो सब कुछ आते हुए भी जितना जल्दी हो सके अपने को स्विच करना वापस उस मोड में कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये अटेंशन, जैसे गुलजार दादी की बात याद करते हैं हमेशा, वो एक ही बात कहते थे, अटेंशन, पुरुषार्थ माना अटेंशन। अटेंशन है तो टेंशन नहीं है। पहले से ही अगर अटेंशन हर चीज का रखेंगे तो कोई भी बात का टेंशन हो ही नहीं सकता है।
और दीदी, जैसे हम भारत में प्रोग्राम्स करते हैं, हम नॉन बीकेस को इनवाइट करते हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने 100 को इनवाइट किया है तो एटलीस्ट 50% तो आएंगे ही आएंगे, और आते भी हैं। तो चाइना में जैसे इंडियन कम्युनिटी की आपने बात की, इंडियन कम्युनिटी तो इस ज्ञान को चलो मान सकते हैं, फिर भी एक्सेप्ट करती होंगी, बट जो वहां पे लोकल लोग हैं वहां पे चाइना के, जिनको इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो लोग कितना ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ते हैं वहां पर?
एक्चुअली वहां स्टेप बाय स्टेप होता है। इंडियंस का तो चलो अलग है बिकॉज दे नो, और लेकिन ज्यादा चाइनीज ही आते हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सीधा ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट होते हैं, वो पहले सिस्टर्स के साथ ही एसोसिएट होते हैं, क्योंकि हम संस्था का डायरेक्ट परिचय पहले नहीं दे पाते, वहां ऐसे अनाउंस नहीं कर सकते, तो पब्लिक इवेंट भी सिर्फ टॉपिक के हिसाब से जैसे वो जो उन आत्माओं को जरूरत है उस तरह के टॉपिक्स रख करके उस तरह की सोल्स अट्रैक्ट होती हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब धीरे धीरे मेडिटेशन की एक्सेप्टेबिलिटी हो रही है, नहीं तो उनको लगता था कि मेडिटेशन माना ब्रेन वॉश। सो मेडिटेशन शब्द नहीं बोल सकते थे पहले, पर अभी धीरे धीरे, अभी जैसे लास्ट ईयर वैसे भी अनाउंस हुआ वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं निकल के आई जो साइलेंटली अपने अपने जगह पर कर रहे थे किसी तरीके का मेडिटेशन, लेकिन ऐसे नहीं था कि अनाउंस्ड वे में। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें ज्वाइन किया। फिर मेडिटेशन का ही एक्सपीरियंस पहले स्टेप में कुछ समय तक, फिर जो आत्माएं हमें लगता है कि ये तैयार हैं उनको फिर हम कोर्स कराते हैं। वो भी 3 लेवल्स में होता है, लगभग 3 मंथ्स कोर्स चलता है।
दीदी, जो कोर्स वहां करवाते हैं और जो कोर्स यहाँ करवाते हैं उसमें कुछ अंतर है या कुछ दूसरे तरीके से वहां कोर्स करवाया जाता है?
एक्चुअली वो भी वहां जाके डिजाइन किया, साथ साथ हुआ, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स आए फिर उनके क्वेश्चंस होते थे और उनकी समझ के हिसाब से फिर लगता था अच्छा इनका कल्चर भी समझ में आता है, तो उस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह की बातें। जैसे जब फर्स्ट कोर्स कराया तो 7 डेज में एक ही लेसन पूरा हुआ। 7 डेज में उसको समझ आया कि आई एम अ सोल, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। फिर 8वें दिन आकर के उसने फिर क्वेश्चन पूछा, मैं अपने को आत्मा क्यों समझूं, व्हाट इज द बेनिफिट? ठीक है, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, पर मैं शरीर समझ के भी ठीक ही चल रही हूं। एंड सो मेनी इयर्स, 45 इयर्स आई हैव ऑलरेडी बीन लाइक दिस, सो किस लिए समझो? फिर अब आपको समझ आता है कि आपको, जब तक उनको लॉजिकली आप ये नहीं बताओगे कि क्यों समझना है आत्मा, तब तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसे करते करते फिर वो डेवलप हुआ कोर्स। फिर हर रोज कुछ पीपीटीज बना के, कुछ एग्जांपल्स निकाल के पर्सनली उस एक आत्मा के ऊपर बहुत समय लगाया। फिर लेकिन वो समय इसलिए था कि आगे आने वाली आत्माओं के लिए कोर्स तैयार हो रहा था साथ साथ।
और दीदी, खान पान का हमने सुना है चाइना में कुछ भी खाते हैं, ऐसा हमने सुना है कि नॉन वेजिटेरियन मोस्टली 90% जो है नॉन वेजिटेरियन ही है, तो बाबा के ज्ञान में तो खान पान की धारणा बहुत मुख्य है, तो इस धारणा को वहां कैसे अपनाते हैं वहां के भाई बहने?
बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है उनके लिए, ये टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और बहुत अच्छे से उनको ये बात एक्सप्लेन भी करनी पड़ती है, क्योंकि फॉर देम प्लांट्स और एनिमल्स एक ही चीज है, उनके लिए फर्क नहीं है। अगर आप बोलो कि इसमें लाइफ है, वो बोलते हैं फिर तो प्लांट्स में भी लाइफ है, उनके हिसाब से ये खाने के लिए ही बना है। एंड दे वुड से कि एनीथिंग विच हैज लेग्स एंड कैन मूव यू कैन ईट एनीथिंग। तो कोई भी चीज जो चलती है, जिसकी आंखें हैं और टांगे हैं, उसको आप खा सकते हो। तो वो उनका विचार है। वो तो वो भी है आगे, लेकिन बात है कि उनको,
दीदी आप कन्विंस कैसे करते हैं उन्हें फिर?
तो अब ये जो इस तरह की धारणा है, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही उनको बताया जाता है लॉजिकली भी कि आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखो। बेसिकली जो लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, बाकियों को हम बात नहीं करते, जो स्टार्ट करते हैं तो उनको फिर हम बोलते हैं कि आप एक्सपीरियंस करके देखो, आप एक महीना, हमें उनको बताना पड़ता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, हमें भी पता होनी चाहिए अच्छी तरह से, कि ऐसे भी ना हो कि कोई उनकी, क्योंकि उनके घर के लोग, फिर पेरेंट्स उनको बोलेंगे टेस्ट कराओ जाके, हमें रिपोर्ट्स दिखाओ। उनको रिपोर्ट्स दिखानी पड़ी बहुत सारी बहनों को अपने घर में कि हम ठीक हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि खाओगे नहीं कुछ तो शक्ति कहाँ से आएगी। तो ये सब बताना पड़ता है और फिर उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिर शुरू करते हैं, और शक्ति साथ में योग की भी है तो फिर धीरे धीरे पावर मिलती है। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। घर गई वो एक बहन वापस और कहती है कि इस बार तो दीदी मैंने सिर्फ वेजिटेरियन खाया न्यू ईयर के टाइम पे। तो हमने कहा न्यू ईयर पे तो आपके वहां वेजिटेरियन बनता ही नहीं है। तो आपने अलग बनाया, कैसे खाया? कहती नहीं, मैंने बीच में से चूज कर लिया, सब मिक्स था, उसमें से मैंने बीच में से लीव्स निकाल लिए और कुछ वो कैरेट निकाल लिया, ऐसे करके खा लिया। कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ ही नहीं है कि वो तो समझाना पड़ता है उनको कि ये तो अशुद्ध हो गया, मिक्स हो गया।
तो दीदी, जो वहाँ क्लास में बाबा के बच्चे आते हैं वो पक्की धारणा वाले हैं या उसमें भी ऐसे मिक्स मिक्स हैं?
आते आते ही बनते हैं ना, आते आते बनते हैं, सभी तरह के होते जो आते हैं। बाकी बाबा मिलन के लिए तो जैसी धारणाएं हैं वो जो कंडीशंस हैं उसके बाद ही लेके आते हैं उनको।
और दीदी, एक ये पार्टिसिपेंट्स में से ही क्वेश्चन है, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये है, हाउ टू बिकम फेयरलेस इन एवरी सर्कमस्टांसेस, हाउ टू ओवरकम फेयर इन स्पीकिंग टॉकिंग विद न्यू पीपल। क्वेश्चन ये है, बट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रही हूँ कि दीदी, जब आप फर्स्ट टाइम, आपको जब पता चला कि आपको चाइना सेवाओं के लिए जाना है, तो क्या आपके मन में कुछ फियर था कि वहां किस तरह से जाएंगे, कैसे सेवाएं होंगी, किसी को जानते नहीं है, क्या करेंगे? तो आई थिंक जिसका भी क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल जो दीदी के जीवन में परिस्थिति आई, सर्कमस्टांसेस आए और दीदी ने उसको कैसे हैंडल किया, वो आंसर उनको मिल जाएगा।
एक्चुअली आई ऑल्सो फील वंडरफुल कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, कुछ लैंग्वेज नहीं आती थी, कुछ आता नहीं था, लेकिन डर की फीलिंग नहीं थी। वो एक शायद बाबा लगातार मदद कर रहे थे कि बाबा साथ है, और जब जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सो दिस इज समथिंग विच ऑलवेज हेल्प्स मी कि अगर है वो साथ में है और उसी के साथ के लिए तो जा रहे हैं और उसी के साथ का अनुभव कराने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही किसी भी चीज में, एक्चुअली डर वैसे भी इन जनरल टर्म्स भी डर है क्या? इट्स जस्ट इमेजिनेशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम जब इमेजिन कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना बोल दे, इमेजिनेशन ही तो है। और जब वो एक्चुअल कोई चीज आती है, अगर हम सही रास्ते पर हैं, अगर बात आई भी है तो शक्ति भी आती है। दिस इज वन मोर थिंग जो मैंने हमेशा महसूस करी है कि जितनी बड़ी परिस्थिति आती है उतनी ज्यादा शक्ति इमर्ज हो जाती है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत सारी चीजें आई, चाहे हेल्थ इश्यूज आए या और भी चीजें आई, तो कभी कभी जैसे सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, आई वॉज इन हॉस्पिटल और मैं सोच रही थी कि कभी छोटा सा भी दर्द होता है, कट लगता है तो डर लगता है उससे भी किसी को, और जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है उसको भी हम सहन कर लेते हैं। तो मतलब हर चीज को सहन करने की और फेस करने की शक्ति हमारे अंदर है, सिर्फ इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पावर भी बाबा की मिलती जाएगी, होता जाएगा।
जैसे बाबा की मुरली में कहते, संकल्प जो है परिस्थितियां क्या है, व्यर्थ संकल्पों की रचना ही परिस्थिति है। तो ऐसे ही दीदी का कहना है कि वो इमेजिनेशन ही है, फियर कुछ भी नहीं है। तो दीदी, एक और क्वेश्चन है, पराए देश, पराए लोग, पराया कल्चर में रहते रहते अपने ब्राह्मण परिवार से मिलने की आपको खींच नहीं होती?
और ज्यादा होती है और ज्यादा होती है, और बहुत याद करते हैं हमेशा। और हम उन लोगों से भी यही कहते हैं कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये आप लोग यहाँ बैठे हो क्लास में, जो भी वहाँ भाई बहनें होते हैं या जो बहनें साथ भी रहती हैं, कि अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि आप लोग को और इस स्थान को और सिर्फ मैं, तो शायद रहना मुश्किल हो जाए। तो हम अपने पीछे पूरा मधुबन देखते हैं, पूरा यज्ञ देखते हैं, साथ में है, इट्स ओनली पार्ट ऑफ दैट यज्ञ। तो ये फीलिंग रहती है, इसीलिए कनेक्टेड मन से भी रहते हैं और जब जब चांस मिलता है तो फिर आ जाते हैं।
और दीदी, एक क्वेश्चन है कि डू यू एक्सपीरियंस एनी ट्रबल फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट, मतलब वहां की गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट करती है, या वहां पे क्या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनमें आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? और वहां
बस थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगी, आपने पूछा है तो, जैसा देश वैसा भेष। और वी शुड रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ लैंड. दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज रिमेम्बर कि जो भी वहाँ के नियम है, जहाँ हम हैं कायदे में फायदा है, तो वहाँ के जो ईश्वरीय नियम है वो पर्सनली है हमारे लिए मेंटेन करने के लिए, और बाकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको रिस्पेक्ट हम करेंगे तो उसकी सूक्ष्म गति भी होती है कि सूक्ष्म रूप में भी दिल से हम रिस्पेक्ट करें अगर उनके लॉज को, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ रीजन. तो अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वापस फिर हमें उस तरह के चैलेंजेस नहीं आते, समझ में भी आता है कि उसी के बीच में रह करके कैसे फिर सेवाएं करनी है.
और दीदी, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई बहुत मेजर आपके सामने कोई आई हो जहां आपको लगा हो अभी बस सिर्फ बाबा ही है और कोई भी नहीं है, और आपने उस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया बाबा की याद से, बाबा के साथ से?
एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नॉट वन, और स्थूल रूप में ऐसे बताती हूँ आपको क्योंकि वहां पर ये सब मीडिया का कनेक्शन भी हमारा कट हो जाता है. वहां पर यूट्यूब नहीं चलता है, गूगल नहीं है, जीमेल भी आप नहीं ओपन कर सकते हैं, और फेसबुक और एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड. सो उसको हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर से चलाना पड़ता है अगर हमें कनेक्ट होना है. इवन व्हाट्सएप भी ऐसे नहीं चलता है. तो वो जो चीज है, आप इमेजिन करके अगर आप देखें, शुरू के टाइम में हमें वो भी नहीं पता था कि कैसे कनेक्ट करना है. ओनली पॉसिबिलिटी वॉज कि हम डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉल करके, अगर मुझे पूछना है कुछ मधुबन से, कोई डायरेक्शन लेना है, सिर्फ वही था क्योंकि और कुछ चल नहीं रहा था. और ऐसा काफी समय तक चला. आप इमेजिन कर सकते हैं कई बार अचानक ऐसी कोई बात कि आपको अर्जेंटली आंसर चाहिए, तो एक ही चीज थी, और शायद उस चीज ने और ज्यादा बाबा के साथ कनेक्शन को मजबूत किया. कनेक्शन तो था ही, फेथ भी था, लेकिन जब कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, है भी तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बस बाबा के कमरे में जाके बाबा से पूछना है. फिर जब कनेक्ट हो पाए तो फिर उसे वेरीफाई करना है. और ये बात मैं सबको बोलती हूँ कि बाद में उसको बड़ों से वेरीफाई जरूर कर लो. ये भी नहीं कि हाँ मेरे को तो बाबा ने आंसर दे दिया. समटाइम्स वो होता है कि अपनी ही आवाज होती है अंदर, हमें लगता है बाबा ने आंसर दे दिया. तो ऐसी ऐसी तो बहुत सारी चीजें आई हैं. और ऐसी थी एक, वो मतलब डायरेक्टली फाइनेंशियल भी नहीं थी वो चीज, बट रजिस्ट्रेशन और कई चीजों से लिंक थी, और अगर एक भी गलती होती तो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा सीरियस हो सकते थे. पर वो ऐसी टचिंग थी जिसमें पता चल रहा था कि ये बाबा बता रहे हैं, मेरा थॉट हो ही नहीं सकता. कई बार आपको लगेगा कि ऐसा आंसर मेरा नहीं हो सकता, मेरी नॉलेज के बियॉन्ड है. तो ऐसी ऐसी कई चीजें हुई हैं.
क्वेश्चंस तो दीदी बहुत सारे हैं, हम सभी जानना चाहते हैं और बहुत माइन्यूटली जानना चाहते हैं कि वहां कैसे कैसे किस तरह से सेवाएं होती हैं. परंतु समय को देखते हुए, क्योंकि भाई बहनों के भी हमें अनुभव लेने हैं, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ. एक शब्द किसी ने पूछा है, एक शब्द इन दिनों बहुत हिट करता है, कर्मातीत. तो आप कर्मातीत बनने के लिए कुछ टिप्स बताएं,
क्योंकि अब तो वैसे भी समय नजदीक आ रहा है, आ ही गया है, और आप सब देख रहे हैं वर्ल्ड की सिचुएशंस. अब हम इस चीज को डिले नहीं कर सकते. अब हम इस चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि करना है कर लेंगे, अभी ही करना है. और उसके लिए बहुत छोटी बट बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, इम्पोर्टेंट बातें छोटी छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं, जो हम अभी से शुरू कर सकते हैं. किसी भी आत्मा के प्रति, किसी के लिए भी, अगर कोई भी जरा सी भी हेट की, नेगेटिविटी की, कोई भी तरह की फीलिंग है, तो उसको साथ के साथ इरेज करना है, खत्म करना है. कहीं किसी की गलती को लेकर के भी मन में रखा हुआ है, माफ कर देना है. आज सुबह भी हम सुबह के सेशन में भी एक बात कही, माफी मांग लो और माफ कर दो. ये इतनी जरूरी बात है क्योंकि बाकी जो सारी स्टेजेस हैं कर्मातीत बनने की, वो इससे पहले शुरू हो ही नहीं सकती. आप विजुअलाइज करो कि मैं जो भी हम विजन बनाते हैं मेडिटेशन में बैठते हैं योग में बैठते हैं, लेकिन अगर मन में, बाबा ने भी बोला था कि एक आत्मा के प्रति भी अगर घृणा भाव है, द्वेष का भाव है तो मेरे मन में ना, चाहे एक के लिए हो या दस के लिए हो, मन तो मेरा मैला हो गया और भारी हो गया, और भारी मन उड़ नहीं सकता। और कर्मातीत है कि कर्म के बंधन से मुक्त। और दादी जानकी जैसे हमेशा कहते थे कि मुझे यहाँ कर्मातीत बन के फिर यहाँ रहना है, मुझे ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे और फिर चले जाएंगे। और हमने देखा दादियों को बन के रहना है, अभी बनना है और उस स्थिति का आनंद लेना है कि कोई चीज इफेक्ट कर ही नहीं रही। और बहुत इंपॉर्टेंट, बातें तो आएंगी, ज्यादा आएंगी, चैलेंजेस ज्यादा आएंगे, शरीर के कष्ट भी और ज्यादा आएंगे क्योंकि अति में जाएगा सब कुछ, लेकिन आ रहा है और जा रहा है, सीन खत्म, सीन चल रहा है, मुझे उसका कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन कम से कम ये फॉरगिवनेस जो है, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, ये तो आज और अभी से करके ही जाना है अगर है कुछ ऐसा रखा हुआ अभी तक भी।
बहुत बहुत थैंक यू दीदी का। तो एक नए स्थान पर इस तरह से सेवाएं करना, सभी चैलेंजेस को फेस करना, तो अगर हम दीदी का जीवन देखें और अपना जीवन देखें तो बहुत सहज रूप से हमारे पास तो बहुत मौका है पुरुषार्थ करने का, बहुत सब कुछ हमारे लिए बहुत इजी है, कुछ इस तरह के हमारे पास चैलेंजेस नहीं है। तो हम आज दीदी के सामने संकल्प सभी करें कि हम अपने पुरुषार्थ को वेट नहीं करें कि कोई परिस्थिति आए तो हम आगे बढ़ करके पुरुषार्थ करें, परंतु बहुत सहज रीति से जो हमें सुख साधन सब यहाँ पर मिले हुए हैं, सुनी के बीच में रहते हुए हम अपने पुरुषार्थ को और तीव्र करें। ओम शांति।
ओम शांति। आप सबको कुछ कार्ड्स दिए गए हैं, अभी लास्ट के तीन दिनों में जो भी हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत सारे अनुभव किए, लेकिन हमारा थीम क्या था, रेडिएटिंग गॉड्स लव। तो अब जो हमने अनुभव किया है बाबा से, जो भी गुण शक्तियां और वर्कशॉप्स और क्लासेस के द्वारा जो भी अपने अंदर भरा है, हमारी अब ड्यूटी है उसको हमको बाहर जाके और आत्माओं के साथ शेयर करना है, रेडिएट करना है। और सबसे सुंदर तरीका जो शेयर करने का है वो आपके वाइब्रेशंस हैं, आपके एक्शंस हैं, आपके कर्म हैं, आपका व्यवहार है, आपकी दृष्टि है। तो हर एक की फील्ड अलग अलग है, आप सभी का कार्य क्षेत्र अलग है, रिलेशंस कनेक्शंस अलग हैं और परिस्थितियां अलग हैं। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आप एक एक्शन प्लान बनाएंगे, हाउ विल आई रेडिएट गॉड्स लव टू द वर्ल्ड आउटसाइड इन टू माई वर्ल्ड। मैं अपनी दुनिया में, अपनी अपनी दुनिया है ना हर एक की, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, कार्यक्षेत्र पर जिनके साथ हम काम करते हैं, और भी जिन लोगों से हम हर रोज मिलते हैं, जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया के अंदर जो आपकी अपनी दुनिया है, उसमें मैं गॉड्स लव को, परमात्मा प्यार को अपने जीवन के द्वारा कैसे प्रत्यक्ष करूं, या एक एक्शन प्लान अभी से ही शुरू करना है जो मुझे जाने के बाद, प्रैक्टिकल समथिंग, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। इसके ऊपर वो लिखेंगे आप, और बाद में फिर बाहर वॉल ऑफ वाइब्स है, उस वॉल ऑफ वाइब्स में सबकी फिर ये वाली वाइब्स इकट्ठी होंगी, उसमें आप हैंग करेंगे बाद में जाते समय। तो इसमें आप अभी लिख सकते हैं। सबके पास है ना कार्ड्स, जिनके पास नहीं है वो यहां से ले सकते हैं सामने, उसमें कुछ प्रैक्टिकल आप सुनाने का भी हो सकता है, वाणी द्वारा हो सकता है, थॉट्स द्वारा हो सकता है, कर्म द्वारा हो सकता है, anyway, whichever way you feel that you will do from now. आज तो अभी भट्टी पूरी हो रही है, संकल्प आपने लिख दिया है और आप यहाँ पर हैंग करेंगे, अपने दिल में तो आपने लिख ही लिया है जो आपका एक्शन प्लान है, और निकलने से पहले जब लंच पे जाएंगे उससे पहले बाहर वॉल ऑफ वाइब्स पर आप इसे हैंग करके जाएंगे, ताकि सभी के वाइब्रेशंस एक दूसरे के सबके मिलाकर के कितने मल्टीप्लाई हो गए, तो वो सब यहीं से ही रेडिएट होना शुरू हो जाएंगे, पहले यहाँ ज्ञान सरोवर से निकलते हुए पूरे विश्व में चाइना तक भी जी। और आप में से अगर किसी को लगता है कि मेरा अनुभव बहुत विशेष रहा इन 3 दिनों में, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद द फैमिली, जो अभी बच्ची की है हमने 3 दिन में, उसमें कोई भी जो आपको विशेष अनुभूतियां हुई हैं या विशेष जो आपको लगा कि ये धारणा मेरी मजबूत हुई है, ऐसा कुछ जो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, आप शेयर करेंगे? कौन करना चाहते हैं शेयर ऐसा कुछ विषय? भट्टी का अनुभव, उससे पहले का ज्ञान में आने का, वो नहीं, भट्टी का, ठीक है? हाँ जी आइए।
ओम शांति। शरीर का नाम सतीश गुलाटी, ज्ञान में 2016 से द्वारका सेक्टर 11 सरोज दीदी की पालथा में पल रहे हैं। प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जैसे कि हमारी भट्टी का थीम ही था रेडिएटिंग गॉड्स लव, तो सारी दीदियाँ भाइयों और बहनों से हमने ये सीखा और उन्होंने हमें बताया कि कैसे गॉड लव्स को रेडिएट कर सकते हैं। तो मैंने सारी दीदियों भाइयों के एक एक चीज मैंने ली है। अनीता दीदी ने हमें बताया कि दिल में खाली गॉड को रखना है, बिकॉज गॉड इज ग्रेटेस्ट जेलस। तो मैंने अपने दिल में गॉड को बिठा लिया है और नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। उसके बाद सूरज भाई जी ने बताया कि ये जो आपके पास है आप वो ही दे सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले आपको अपने आप में भरपूर होना है। उसके लिए उन्होंने बताया कि कम से कम 4 घंटे को बाबा से याद करो। तो मैंने देखा कि 4 घंटे तो नहीं होते, अमृत वेला, नुमा शाम, रात्रि, 4 घंटे नहीं होते। तो उन्होंने हमें बताया कि दिन के जो भी छोटे छोटे कार्य होते हैं उनसे पहले आप वो करिए। एक उन्होंने एग्जांपल दिया नहाने के समय कैसे करेंगे, तो मैंने उसको 2 दिन अभ्यास किया है, उसको 4 भागों में बांटा। ब्रश करते हुए एक सोमान लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। उसके बाद शेविंग करते हुए मैंने सोमान लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। नहाते वक्त मैंने लिया 5 स्वरूपों का वो, और कपड़े पहनते वक्त मैंने लिया कि मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। उसके बाद सुनीता दीदी जी ने बताया कि लव के बारे में बताया कि क्या है लव एक्चुअल में। तो उनसे मैंने शिक्षा ली कि हर समय, हर परिस्थिति और हर स्थिति में स्नेह कैसे बांटना है। उसके बाद हमारी सपना दीदी से, जिन्होंने हमें कल साक्षात्कार कराया अपने स्वरूप का, तो उसमें जो डिफरेंस था उसको कैसे मिटाना है। तो मृत्युंजय भाई जी ने कहा था एक और एक 11 साल बचे हैं हमारे संगम युग पर, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब 11 नहीं, एक और एक 2 बचे हैं। तो मैंने प्रण किया है कि इन 2 सालों में मेरे को उस डिफरेंस को खत्म करना है। आज सचिन भाई जी ने बताया कि क्या करेंगे, तो मैंने उसमें किया है तीर पुरुषार्थी का संग करना है। ओम शांति।
बहुत अच्छा, शुभ संकल्प है, और शुभ संकल्प तो बाबा उसको शक्ति भी देते हैं और वरदान बना देते हैं। अभी और कौन है जो आइए भाई, आप नेक्स्ट भी रेडी रहिए, फिर आगे आ जाइए।
ओम शांति। शरीर का नाम पीके प्रणय भाई, कोटा वल्लभ नगर से। वैसे तो भाई साहब ने सारी चीजें कवर कर ही दी हैं, मैं सभी को एक बात और ही बताना चाह रहा हूँ। दीदी का लिंक्डइन पेज है, मैं दीदी से लंबे समय से कनेक्टेड हूँ, और चाइना में कैसी सेवाएं होती है वहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, फोटोज वीडियोज सब प्रॉपर अपलोड होता है, अपडेट होता है। और दीदी भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मैंने एडुकेशन में देखा है। और एक बात ये शेयर करनी है कि उन सभी एंजल्स ने जिन्होंने, दीदी ऐसा मेरा दिल है कि जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, अकाउंट्स परिवार के वो सेवादारी भाई बहन जिन्होंने पूरा अरेंज किया, तो अगर इफ पॉसिबल टाइम मिले तो एक बार हम सभी उन सभी एंजल्स को देखना चाहते हैं।
प्लीज अभी आ जाओ
और सभी एक बार खड़ा हो।
एंजल्स, आपने मेरा संकल्प पूरा कर दिया। रुचिका बहन, रश्मि बहन, प्रिया बहन,
सागर भाई,
सागर भाई आइए। आप भी आ जाओ, आइए प्लीज आइए, जो सेवा में है ना। ये सभी आप एंजल्स को देखना चाहते हैं और ये पूरी टीम एक्चुअली, स्पेशली रुचिका बहन एंड रश्मि बहन। ये रश्मि बहन है, ये रुचिका बहन है, सभी जानते ही हैं वैसे तो, बड़े तो बड़े ही हैं, पर साथ में जिस टीम ने सारा कार्य किया है। निधि बहन कहाँ हो, आइए 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 ऊपर आइए। अनमोल बहन और तनु बहन, तनुषा बहन, रूही बहन आइए प्लीज। अब एक अच्छा सा, अब अच्छे से सभी ताली बजा करके, नो 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 नो, 1 2
हाँ, एक बार खड़े होके सभी।
शुभी बहन कहाँ है, शुभी बहन, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, वैसे तो रुकनी नहीं चाहिए तालियां, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से इतनी, पर इसके मल्टीप्लाई बाय मल्टी मिलियन टाइम्स, क्योंकि ये बहुत, आई थिंक जब से प्रोग्राम बना एटलीस्ट 2-3 महीने से तो लगातार बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी डिटेल्स, सो मैनी थिंग्स टू डू, ताकि आप सब जब आए तो सबको बहुत अच्छे से स्मूथली एक प्रोग्राम चले और सबको अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो। और कल भी आपने जो देखा, सब कुछ एक एक चीज हाथ से की गई है, हैंडमेड एवरीथिंग, ब्यूटिफुल सब कुछ, सब कुछ जो आपको बैजेस मिले हैं सब कुछ हाथ से बनाया गया है, टियारा सब, आपका जो डेकोरेशन हुआ ना कल भी पहले भी, जो आपने ये टैग्स लगाए हैं, एवरीथिंग सब कुछ, प्रोग्राम बनाना, कोऑर्डिनेट करना, डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच।
जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस रिट्रीट में, लास्ट टाइम नहीं आए थे, स्पेशली वो भाई बहन आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें कि उनको कैसा लगा। जी आइए, लास्ट ईयर मानसरोवर में हुआ था। जी जी, लास्ट टाइम वाले भी आ सकते हैं जी, इफ टाइम परमिट्स। नहीं, प्रायोरिटी प्रेफरेंस जो है फर्स्ट टाइम जो आए हैं इस रिट्रीट में, भाइयों की साइड से यहाँ आ जाइए कोई पहले से जो अनुभव शेयर करेंगे, बहनों की साइड से बैठ जाइए।
ओम शांति। शरीर का नाम है कनिका, मैं प्रैक्टाइजिंग सीए हूँ। मेरी ये फर्स्ट टाइम भट्टी ही मैंने फर्स्ट टाइम करी, क्योंकि मुझे अभी ज्ञान में ऑलमोस्ट 2 साल ही हुए हैं, मैंने बिल्कुल नया नया लिया है। एंड एक्सपीरियंस मुझे सिर्फ, मैंने एक 6 घंटे की भट्टी दीदी ने सेंटर पे करवाई थी, तो बस उसका थोड़ा बहुत था, और उन्होंने कह दिया कि यू शुड गो, तुम्हारी प्रीवियस रह गई थी एंड नाउ यू शुड गो। एक्सपीरियंस जब बेस्ट एक्सपीरियंस ये था दीदी, आज जो आपने लाइन बोली ना कि बड़ों से कंफर्म कर लेना चाहिए बाबा की टचिंग, मुझे ना योग में बहुत समझ में नहीं आ रहा था, कमेंट्री करूं कि गाने सुनूं कि क्या करूं, और मैं कई बार सो जाती थी। तो जैसे टचिंग मिलती थी कि बाबा कहते थे कि एक काम करो, जो मैं मुरली में टॉपिक देता हूँ वो बैठ के लिखो। शुरू तो कर दिया लिखना, किसी दिन मन करता किसी दिन नहीं, पर यहाँ जो पूरा एक्सपीरियंस मिला, जैसे दीदियों ने भी लिखवाया, भाइयों ने भी लिखवाया, सब ने लिखवाया, तो वो कन्फर्म हो गया कि वो बाबा की ही टचिंग थी। कि कह रहे थे योग सिर्फ बैठ के नहीं है, वो हर तरीके से योग है। और हमारे प्रोफेशन में हमें यही योग चाहिए, क्योंकि हमारे सामने क्या होता है, हम यहाँ से भी काम कर रहे होते हैं, हम यहाँ से भी काम कर रहे होते हैं, हम यहाँ से भी काम कर रहे होते हैं, हमारे को पता भी नहीं चलता है। तो अगर हम वो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ा लगा लोगों का कि सब सोच रहे थे कि शायद बैठ के योग होता है, या मेरे भी जानने में ऐसे हैं कई, तो सोचते हैं जब तक बैठ ना जाए योग नहीं होने का। बट प्लीज, बिल्कुल नहीं। बाबा ने जो योग सबसे स्पेशल राजयोग का यही है कि तुम्हारे दिल से है वो योग, लिखो, घूमो, पढ़ो, कुछ भी करो, पर दिल से करो। धन्यवाद।
ओम शांति। इस शरीर का नाम है बीके संभाजी थोरात। आई बिलोंग्स फ्रॉम महाराष्ट्र, दापोली तालुका एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। सर, हमारी सारिका बहन जी मुझे यहाँ लेके आए, पहले उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, बिकॉज उन्हीं की वजह से आज मेरे पांव ये भूमि पे लगे हैं और मुझको कुछ वरदान मिला है और बहुत कुछ मिला है। ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँगा। पहली बार भट्टी में आया इसीलिए क्योंकि मैं बैंकर हूँ। 200 करोड़ का बैंक मैंने 4 बरस में 700 करोड़ तक लाया। प्रॉब्लम एक ही था, मुझ में क्रोध है। वो क्रोध कम करने के लिए आया और बाबा ने मुझे गिफ्ट दिया भारद्वाज भाई की तरफ से। उन्होंने बोला आज से चार्ट रखो, चार्ट रखा जाएगा और क्रोध डेफिनेटली कम हो जाएगा। दिस इज माय अचीवमेंट, दिस इज माय गोल। बाकी आप सब लोगों को मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं, लेकिन कल रात बैठे बैठे बाबा की याद में आप सभीयों के लिए एक कविता लिखी है, 2 मिनट में पढ़ता हूं। कविता ऐसी है, बैंकर बनकर आया था मैं, फरिश्ता बनकर जाता हूं। बैंकर बनकर आया था मैं, फरिश्ता बनकर जाता हूं, विश्व शांति का पैगाम लेकर शांति दूत बन जाता हूं। भट्टी और रिट्रीट के कारण मिला मैं सबको आके मधुबन, समझ गया इस मिट्टी का बड़प्पन, बाबा के चरणों से पावन। मॉर्निंग वॉक को डेविड भाई ने एंजल वॉक में बदल दिया, मधुर बांसुरी शंख नाद से पंछी को भी जगा दिया। कृति बहन का नृत्य देखकर माहौल सारा बदल गया, मधुर वाणी के मधुर गीत ने पल पल सबको भुला दिया। अमृत वेला और मुरली सुनते बाबा में हम समा गए, लवफुल जॉयफुल समान लेकर भट्टी को हम जगा गए। दीदी और भाई ने हमको प्रभु प्यार का ज्ञान दिया, गोकुल भाई के पुरानी याद ने हंसते हंसते रुला दिया। निधि प्रिया और मिली बहन ने हमें शीतल सुंदर बना दिया, सागर भाई के क्वीज स्ट्रेचिंग ने हर चेहरे को खिला दिया। बाबा की भंडारी में तो अच्छा अच्छा खाते गए, देने वालों के चेहरे की खुशी मन मन में हम समा गए। सौगात की तो नुमा शाम चमकीली और रंग भरी, सपना दीदी के होने से बन गई वो एक याद भरी। प्रभु प्यार का पात्र बनाया, शुक्रिया बाबा सबसे भला, प्यार और शांति को बांटने ये आपका फरिश्ता चला।
नाम बीके आशीष भाई है और सेवार्थ बाबा ने पाठ सीए का दिया है। तो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, मैं फर्स्ट टाइम इस रिट्रीट में आया। अभी तक नीचे जो भी भट्टी होती थी शांति वन में वो की थी, लेकिन बहुत सुंदर एक्सपीरियंस इस भट्टी के द्वारा बाबा ने कराया और सभी का, सबसे पहले बाबा का और जो भी आत्माएं जिन्हें भी बाबा ने निमित्त बनाया, चाहे सपना दीदी हो, रुचिका दीदी हो, सभी हो, तो सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि अभी तक के हमने आईटी विंग देखी थी, अभी तक मेडिकल विंग्स देखी थी, सारे प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन हमारे अकाउंट्स की अलग से रिट्रीट सोचना और प्लान करना, तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस इसके द्वारा बाबा ने कराया। और भट्टी में हर चीज, रिट्रीट में हर चीज टॉप नॉच थी, चाहे वो रुकने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन हो, चाहे क्लासेस हो। और बहुत वंडर लगता है कि कैसे बाबा एक एक आत्मा को जानता है कि इस आत्मा को क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये आई है, भट्टी में, तो चाहे किसी के भी द्वारा, जैसे दीदियों के द्वारा, क्लासेस के द्वारा, साथ में कुछ भाई भी मिले जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है, जो कैसे प्रैक्टिस को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मेरे मन में ये सवाल था कि बाबा इतना वर्कलोड होता है, कैसे मैनेज करे, कैसे कर्मयोग करे। तो ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स भाइयों को देखा जो इतने वर्षों से ज्ञान में और इतने अच्छे से सब कुछ निभा रहे हैं, तो यही रियलाइज होता है कि जैसे बाबा कहते हैं हम सभी बाबा के सैंपल सोल्स हैं, सैंपल को देख करके ही सौदा किया जाता है। तो बाबा हम सबको भले ही बाहर रखा है लेकिन सैंपल बना करके रखा है कि इतनी बिजी लाइफस्टाइल होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हम ज्ञान योग में, धारणाओं में बहुत पक्के रह सकते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस लेकर के जा रहा हूं। एक छोटी सी कविता मैं भी आपको सुनाना चाहूंगा, और क्योंकि ये दिस रिट्रीट इज अबाउट रेडिएटिंग गॉड्स लव, लेकिन उसके जैसे बाबा ने कहा था, कल भाई जी ने भी कहा कि अनुभवी ही अनुभव करा सकता है। तो गॉड लव रेडिएट करने के लिए सबसे पहले उसका अनुभव हमें होना जरूरी है, और हम तो बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो भगवान का लव हमें ये नहीं होता कि बाबा हमें हमारा योग क्यों नहीं लग रहा, बाबा मेरा योग नहीं लग रहा, बाबा कई बार वरदान में भी कहते ना, हम तो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा इतना प्यार हमें क्यों करते हो। देखो हम सभी को बाबा ने यहाँ रिट्रीट में बुलाया, क्यों बुलाया, क्योंकि बाबा का ये प्यार रिफ्लेक्ट होता है। तो छोटी सी कविता जो मैंने लिखी थी, इसको आप सभी साथ साथ में एक्सपीरियंस भी करें। एक सवाल है मेरा, क्यों इतना प्यार करते हो, जमाना तुम पे मरता है, तुम क्यों मुझ पे मरते हो, हर रोज आकर मुरली सुनाना, दिल छूके मेरा बातें बनाना, रूठू जमाने से तो आकर मनाना, कांधे पे सिर रख गले से लगाना। ओ दिल के सहारे बाबा, इस दिल को कितना भाने लगे हो, देखे जब कोई मुझको तो नजर तुम क्यों आने लगे हो। यही रेडिएटिंग गॉड लव है ना, कि हमें कोई देखे और बाबा नजर आए। तुम्हारी और मेरी यूं ही मुलाकातें चलती रहे, निहारा करूं तुम्हें इन आंखों से और हमारी बातें चलती रहे। क्यों बाबा तुम दिल के इतने पास हो गए हो, मेरे जीवन में अब तुम सबसे खास हो गए हो, आई ना बनकर मुझको सजाना, नुमा शाम रहम अमृत वेले प्यार लुटाना, गोद में लेटाकर सर को सहलाना, सत्युग में भी बाबा तुम भी चले आना। बिन बोले भी बाबा तुमसे कितना कुछ कह जाता हूं, सागर बन तू पुकारे तो दरिया बन बहता चला आता हूं, फूलों में ऐसी खुशबू पहले कहां थी संगीत में वो सरगम, अब ये बातें मैं खुद से कहता चला आता हूं। एक सवाल है मेरा, क्यों इतना प्यार करते हो, जमाना तुम पे मरता है, तुम क्यों मुझ पे मरते हो।
ओम शांति। शरीर का नाम बीके रवि भाई है। जयपुर म्यूजियम से, जो बाबा के घर का पहला म्यूजियम है, वहां से हमने सुषमा दीदी और चंद्रकला दीदी के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। 5-6 साल वहां सेवाएं की, उसके बाद में ईश्वरीय सेवा था। हमारा मन में सुबह से एक संकल्प था कि हम चक्रवर्ती बनकर रहेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई और अब हमारा ट्रांसफर होता रहता है। हम कभी दिल्ली जोन में तो कभी महाराष्ट्र जोन में रहते हैं, ऐसे हमारा बदलता रहता है। अब हम शुरुआत से ही अकाउंट से तो जुड़े हुए थे, जब से हम सीए बने हैं तब से हमारे मन में एक ही सवाल था कि मधुबन की जो अकाउंट्स टीम है उसमें हम अपना योगदान कैसे देवें, वहाँ के अकाउंट्स को मैं कैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। और आज हमने पहली बार, मैं मधुबन में तो आते ही रहता हूँ, साल में 2 बार आता हूँ, लेकिन इस बार मैं पहली बार कुमारों की भट्टी को छोड़ करके फाइनेंस वाली भट्टी को चूज किया है। तो मैंने पहली बार फाइनेंस की यहाँ टीम देखी और मैं अपना अनुभव यहाँ साझा करने नहीं आया हूँ, मैं केवल इस टीम से ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जब भी, क्योंकि मैं फिजिकली तो यहाँ बार बार नहीं आ सकता, लेकिन जब भी ऑनलाइन कोई किसी भी प्रकार के अकाउंट्स फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस की जरूरत पड़े तो अपने ही छोटे भाई को जरूर याद करना। शुक्रिया, धन्यवाद।
शरीर का नाम स्नेहा उपाध्याय है, प्रोफेशन से बैंकर। बहुत डिसाइड करने के बाद मैं स्टेज पे आई हूँ, बिकॉज सिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि जो पहली बार भट्टी में आए हैं वो जरूर आए। तो भट्टी तो पहले है ही, एंड मुझे ज्ञान से जुड़े हुए अभी सिर्फ 4 मंथ्स हुए हैं, सपना दीदी। तो जितने भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ, सबने ये बोला कि यार आप कैसे आ गए, अलाउ नहीं करते आपको आने दिया, बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो। तो ये बहुत ब्लेस्ड हो ये चीज तो मुझे पता थी, बट मतलब एकदम रीजन नहीं समझ आ रहा था। आई वॉज लाइक कि हाँ यार सब बोल रहे हैं तो शायद एक्चुअली में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। बट ये भट्टी पूरी अटेंड करने के बाद मतलब आई फील आई हैव नो राइट टू से कि मेरा ये सेशन अच्छा था या वो सेशन अच्छा था। आई हैव गॉट मोर देन आई डिजर्व्ड। इतने कम समय में ज्ञान से जुड़ने के बाद यहाँ आने का मौका मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे रीजन समझ आया है बिकॉज ये 4 महीने में भी मैं सेंटर पे जाने को रेगुलर नहीं हो पा रही थी सम और दी अदर कंसर्न। तो जैसे टाइम मिला वैसे दीदी को फोन किया, बोला कि दीदी आज आ जाती हूँ, आज मेडिटेशन सिखा दो। तो आई थिंक बाबा को मेरा यहाँ भेजने का ये था कि तुम पहले ये पूरा यूनिवर्स देख लो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
शांति, मेरे शरीर का नाम बीके रमेश भाई है। मैं गवर्नमेंट बैंक में सीनियर बैंकर हूं। पिछले 10 सालों से ज्ञान में हूं। जैसा कि हम मुरलियों में सुनते हैं कि ब्राह्मण जन्म का जो शुरुआत है वो स्नेह से ही है, परमात्मा प्यार कहिए, परमात्मा स्नेह कहिए, उसको यदा कदा हम लोग समझते भी रहे हैं कि क्या होता है स्नेह, क्या होता है प्यार। लेकिन जो ये कार्यक्रम रेडिएटिंग गॉड्स लव जो कार्यक्रम था, ये उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। जिन लोगों ने, हम में से कई होंगे जो मम्मा बाबा को नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके न रहने के बावजूद जो इन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा रखी, एक भाई बहन ने जो इसमें अपना समय लगाया है, जो बारीकियों से जो जिसकी चर्चा हो चुकी है, मैं उस पर व्यर्थ समय अपना नहीं जाने दूंगा। वो परमात्मा प्यार का, परमात्मा स्नेह का वो जीता जागता उदाहरण है। हमने मामा बाबा को नहीं देखा, बट जो कार्यक्रम हुए हैं, जो जो चाहे हर वक्ता हो या सपना दीदी स्वयं हो, ये रूपरेखा इस तरह से चला जैसे एक रनवे तैयार किया गया था और सभी लोग पहले रनवे तैयार किए, सेट किए। कल सपना दीदी ने हमें उस पर टेक ऑफ करा दिया और जा करके मुझे, हम सभी को एक सूक्ष्म लोक में, फरिश्ता में हमें बिठा दिया। और आज उसमें एक और बढ़ोतरी हो गया, सचिन भाई ने आकर के ऐसा कहा कि आप वहीं रहो, आप उतरो नहीं। तो इस पूरे जो आज का भट्टी है, इस कार्यक्रम का भट्टी है, उसमें यही टेक अवे है। सभी ने सभी कुछ न कुछ नोट किए होंगे और ये जरूरी है, मैंने भी किया है, मैं विस्तृत विस्तार में नहीं जाऊंगा, बट ये सभी ने नोट किया है कि अभी समय काफी कम बचा हुआ है। अभी इफ एंड बट और बहुत सारा क्लासेस में नहीं, बल्कि अब प्रैक्टिकल में जाना है। हम 50 लेक्चर सुने हो, 100 लेक्चर सुने हो, क्लासेस अटेंड किए हो, वो मतलब नहीं रखता है। अब मतलब रखता है कि आप प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं। अटेंशन, अपने आप पर अटेंशन देना है। कोई अलवेलापन का अभी वक्त नहीं है। कई वक्ताओं ने बोला है 2 साल से लेकर 11 साल तक, आप मत सोचिए, वो तो संगम युग का समय 11 साल मैक्सिमम जो बोल रहे हैं। हमारा समय कितना है, मैं उस संगम युग में कितना समय हूं, मैं अभी बोल रहा हूं कल मैं हूं कि नहीं, इसका कोई गारंटी है? नहीं है। तो इसीलिए हम सभी मुझे खुद भी इस पे अभी एक ही लक्ष्य है कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर इस मार्ग को मैंने चुना है, परमात्मा को पहचाना है, तो उसका रिटर्न यही होगा कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा के उन आशाओं को, इच्छाओं को प्रत्यक्षता करके हमें वो बतलाना ही पड़ेगा। सो यही मेरा लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम देविका है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेंडिंग बीके फाइनेंस प्रोफेशनल योग भट्टी। अदरवाइज आई हैव अटेंडेड अदर्स। सो दिस पोएम एज एवरीवन एल्स हैज शेयर्ड इन हिंदी, सो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश। This is on the Yog Bhatti balance sheet, incorporating several points of different sessions. In the silence of Yog Bhatti, I learn the true accounting of life, living in limitless love, accepting all souls as pages of the same ledger. Unconditional love became my surplus, while every subtraction of ego
made the income minus ego is equal to saving, feel like the purest prophet. I dressed not in fabric, but in the aura of an angel, a costume stitched in light. Even GST whispered a secret, not tax, but godly service, tapasya, the divine return on every transaction of faith. I soared as a flying angel of light, my mind a clear sky, where every thought was a star. In moments of stillness, I felt the sakar palna of all dadis, as you can see behind, the invisible embrace of the advance party. I understood purity is security, the only policy that never fails. To be light, radiate light, is the true dividend. Each day I audited myself, checking my each and every thought and action, till my face becomes a service center where every glance heals, every smile is charity, every silence a blessing. Thus the balance sheet of the soul remains ever in credit, signed not by hand, but by God's love. Thank you.
Om Shanti. इस फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की भट्टी में मैं डॉक्टर ललिता बहन बिकॉज ऑफ माई युगल बिकॉज ही इज फाइनेंशियल प्रोफेशनल. लेकिन यहाँ आकर के जो नवीनता, यूजुअली हम मेडिकल विंग के प्रोग्राम्स में जाते रहते हैं, वहाँ अटेंड करते हैं, लेकिन जो बाबा कहता है ना, बाबा सब हिसाब किताब रखता है. तो मैं ये देख रही हूँ बाबा अपने मिनी हिसाब किताब रखने वाले इतने फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो हैं उनको क्रिएट कर रहा है. तो आप सब लोग रहम दिल हो करके जो भी आपके सामने आने वाले भाई बहन हो, भले बीकेज हो, भले नॉन बीकेज हो, उन सब के अकाउंट्स आप रहम दिल हो करके क्लियर कर देना. ये हमारी आपसे गुजारिश है. क्यों? उसका कारण है क्योंकि बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों को बहुत कष्टों में देखते हैं, बहुत उनको पेन में देखते हैं, दर्द में देखते हैं. तो एक इनेट वैल्यू जो है कंपैशन का, वो आई थिंक हम मेडिकल प्रोफेशनल्स में होता है. तो इसलिए आप लोगों से भी हम यही यूजुअली मैंने देखा है जो टीचर्स होते हैं या बैंकर्स होते हैं, क्योंकि उनसे डील करते हैं तो दे आर वेरी इन लौकिक दुनिया, दे आर वेरी हार्श एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मैं सोचती हूँ बाबा के ज्ञान में आने के बाद ये सोचती हूँ बाबा इन सब का कैसे भला होगा. तो आप सब एक एक जन, एक एक जन जो है ना, ये जिम्मेवारी लीजिए. क्योंकि हम लोग नशा मुक्त भारत अभियान में लोगों को गाइड करते हैं, नशा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, ये सब का. जी जी दीदी, मैं उसी पे आ रही हूँ. तो हम बीकेस को भी जो डिजिटल इंटॉक्सिकेशन हो गई है, एक उसके ऊपर मैंने जो ये थॉट लिया है कि टू मच, क्योंकि कभी एक दीदी का क्लास सुन रहे हैं, कभी दूसरी का क्लास सुन रहे हैं, जस्ट टू इम्प्रूव माई जर्नी. लेकिन यहाँ आकर के जो सचिन भाई ने कहा, क्योंकि वो भी समझते हैं, क्योंकि वो बॉडी और माइंड का जो है ना, तो वो भाषा जल्दी से समझ में आ गई कि आपको इस देह का ध्यान रखना है, साथ में अपनी आत्मा का. तो दोनों का बैलेंस करके के लिखिए. लिखने का काम पहले कम करते थे हम, अब सोचा है यहाँ बैठ करके चार्ट के लिए मुझे थोड़ा और पावरफुल होना है. तो इस हिसाब किताब को, बाबा कहते ना अंत समय सबका हिसाब किताब पूरा होगा, हाँ. तो मुझे यहाँ आकर के सब लोगों से यही वाइब्रेशंस भी आ रही है कि अपने हिसाब किताब को बहुत क्लियर रखना है और पावरफुल होकर के, लवफुल होकर के परमात्मा का संदेश जन जन को पहुंचाना है. तो थैंक यू वेरी मच. दीदी आपने ये मौका दिया और सपना दीदी के अनुभव सुनकर के तो ऐसा लग रहा है कि हम भी बैठ करके चाइना में सेवा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। तो थैंक यू सो मच आप सबसे मिलने के लिए, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। एक बार और ओम शांति। आज जन्म हुआ है तो पावर आई, तो एक सभी मिलकर के हम सभी एक प्यारा सा गीत सबके थैंक्स के लिए करें। खड़े होंगे दो मिनट, सब कुछ छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और मेरे पीछे पीछे गाएं और साथ साथ भी गाएं, जब सीख जाएं तो साथ गाएं। चलिए ताली भी बजा सकते हैं। दीदी जी बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। आप आपके लिए दीदी गा रहे हैं। चलिए दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू वेरी मच, हमें प्यार दिया सम्मान दिया, दीदी थैंक यू वेरी मच, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू, दीदी थैंक यू वेरी मच, हमें प्यार दिया सम्मान दिया, दीदी थैंक यू वेरी मच, दादी थैंक यू, दादी थैंक यू, मम्मा बाबा थैंक यू वेरी मच, हमें प्यार दिया सम्मान दिया, बाबा थैंक यू वेरी मच, शिव बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू, बाबा थैंक यू वेरी मच, हमें प्यार दिया सम्मान दिया, बाबा थैंक यू वेरी मच, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं सबका थैंक यू, सबका थैंक यू, पूरा ज्ञान सरोवर थैंक यू, हमें प्यार दिया सम्मान दिया, सबका थैंक यू वेरी मच, एंड सेल्फ के लिए पैटिंग पीछे, थैंक यू माई सेल्फ, थैंक यू माई सेल्फ, एट इंड इंड द क्या क्या किस क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे, ब्लेसिंग लाइक, हाँ कौन सी भट्टी, डिवाइन भट्टी, माइसेल्फ थैंक यू, माइसेल्फ थैंक यू, माइसेल्फ थैंक यू वेरी मच, आई अटेंडेड दिस पावरफुल भट्टी, डिवाइन भट्टी थैंक यू मच। अब आपने खुद के लिए गाए, सबका थैंक यू, सबका थैंक यू, हाथ जोड़ के मिला के की मच, सबने मिलकर किया इतना प्यारा किया, सबका थैंक यू वेरी मच। अच्छा करते रहे, गाते रहे, वैसे मेरा मन नहीं है दीदी जी से भट्टी लेने का, और दीदी थैंक यू, थैंक यू सो मच दीदी जी के लिए। हम फिर से एक हाथ की ताली बजाएंगे और बाबा की याद में दो मिनट बैठेंगे।